हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक संख्या 29, 30 एंड 31। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतम्, अत्यैव मे विशतो मानसराजहंस, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा, स्मरतव्यं सततं विश्वो विस्मर्तव्यो न जातु चेत्, सर्वविद्धि निषेधास्यो एतयोरेव किंकर, आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय, दत्थाम वृंदावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं, प्रेम पुमर्थोमः, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो न पर वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा, पीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा, पूर्णे सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा, कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जाने, ब्रजीवसंतम नवनीत चोरं गोपांगनानां चदुकूल चोरं, श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं, चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि, श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया భగవదీయుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్ భవతి నైష్టికీ పంచతత్వాత్మకం ద్వేషం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్త శక్తికం జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్తవింద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే శ్రీమద్భాగవతం మహాపురాణ కీ జయ హో ప్రథమ స్కంద అధ్యాయ 17 జిస్కా శీర్షక్ హై కలి కో దండ తథా పురస్కార్ శ్లోక్ సంఖ్య 29 ఇన్ అత్యంత హి పవిత్ర శబ్దో కో మేరే సాథ్ సాథ్ ఉచ్చారణ కర్నే కా ప్రయాస్ కీజియే తం జిగాంసుం అభిప్రేత్య విహాయ నిపలాంచనం తత్పాదమూలం శిరసా సమగాద్ భయవిహ్వల తం జిగాంసుం అభిప్రేత్య విహాయ నిపలాంచనం తత్పాదమూలం శిరసా సమగాద్ భయవిహ్వలం భయవిహ్వలః తం జిగాంసుం అభిప్రేత్య విహాయ నిపలాంచనం తత్పాదమూలం శిరసా సమగాద్ భయవిహ్వలః శబ్దార్థ తం జిగాంసుం తమ్ యని ఉస్కు జిగాంసు మనం మార్నే కి ఇచ్చుక్ అభిప్రేత్య ఠీక్ అభిప్రేత్య మతలబ్ ఠీక్ సే జాన్తే హువే విహాయ విహాయ యని చోడ్కర్ నృపలాంఛనం రాజా కా జో వేష్ ఉస్నే ధారణ కియా థా ఉస్కు చోడ్ దియా తత్ పాదమూలం ఉస్కే బాద్ చరణో పర్ శిరసా సిర్ సే సమగాద్ యని పూర్ణతయా శరణాగత్ భయ విహ్వలం భయభీత్ जैसे हमने कल पढ़ा इति धर्म महिम चैव सांत्वयित्वान महारथ जब महाराज परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी महारानी जो गौ के रूप में थी और जो बैल के रूप में धर्म था उन दोनों को सांत्वना दिए उसके बाद क्या किया निशातमाददे खड्गम फौरन से अपनी तलवार निकाली और कलये अधर्म हेतव कलयुग जो कि अधर्म का प्रतीक था अधर्म कर रहा था उसको तलवार से मारने के लिए वो आ रहे थे और तम जिगांसुम अभिप्रेत्य जब कलयुग ने महाराज परीक्षित के इस अभिप्राय को समझा तो विहाय नृपलांचनम फौरन से अपना जो ये वेश धारण किया था ना राजा जैसा वो उसको फौरन से हटा दिया पादमूलम शिरसा फिर तो क्या किया अब क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था बचने के लिए पादमूलम उनके पैरों के चरणों के तलवों पे आके शिरसा सर अपना रखने लगा समगाद भय विह्वलम पूर्णतया से शरणागत हो गया और भयभीत हुआ कि कहीं बस मुझे मार न डाले महाराज परीक्षित अनुवाद देखिए जब कलि ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया श्री प्रभुपाद की जय श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कली का राज वेश नकली था राजा या क्षत्रिय के लिए राजवेश उपयुक्त होता है किंतु निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है तो उसकी असली पहचान महाराजा परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रिय की ललकार के प्रकट होते ही महाराजा परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रिय की ललकार से प्रकट हो जाती है यानी जब इस तरह का कोई राजा आ जाता है सामने तो वो उसकी सारी असलियत सामने आ जाती है कि वो क्षत्रिय है या शूद्र है या क्या बस अपना वेश धारण करके आ गया है और असली क्षत्रिय कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि क्षत्रिय का जब जन्म होता है ना तो उसकी माता उसको सिखाती है कि क्षत्रानी जिस दिन के लिए अपने पुत्र को जन्म देती है वो दिन होता है कि वो या तो धर्म के लिए युद्ध करता करता मर जाए या विजय प्राप्त करके आए। वो कभी भी आत्मसमर्पण करता नहीं है। जैसे जब पांडव जन जब जा रहे थे युद्ध करने के लिए तो कुंती महारानी ने उन्हें कहा था, देखो पुत्रों, क्षत्रानी जिस दिन के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है वो दिन आ गया है, अब जाओ युद्ध करो या तो विजयी होकर आओ वरना फिर अपना मुंह कभी मुझे नहीं दिखाना। आत्मसमर्पण करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जैसे ही महाराजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली तो ये जो क्षत्रिय राजा बना हुआ था ना, शूद्र था, और फौरन से आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया उसने? फौरन से जैसे ही समझा तम जिघांसुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांचनम, अपना वेश फौरन से वो वाला त्याग दिया और तत्काल मूल श्रसम अपनी सर को उसके चरणों पे रख दिया महाराजा परीक्षित के समागत भय विवरम, और डरने लगा कि अब तो मेरे प्राण खतरे में हो गए, अब प्राण बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मगर क्षत्रिय जो होते हैं, वास्तविक जो क्षत्रिय होते हैं, उनको अपने प्राण की कोई चिंता नहीं होती है, वो धर्म के खिलाफ युद्ध करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं और हमेशा विजयी होते या धर्म के लिए युद्ध करते करते अपने प्राण त्याग देते हैं। आगे श्री रूपा जी कहते हैं, वह अपने प्रतिद्वंद्वी क्षत्रिय की ललकार को स्वीकार करता है और या तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है, जो वास्तविक क्षत्रिय होता है। वास्तविक क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में ना जाने कितने ऐसे छद्म वेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों के स्वांग भरते हैं, किंतु उनका भेद तब खुलता है जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। अतएव जब छद्म वेशधारी कली ने देखा कि महाराजा परीक्षित से युद्ध करना उसके बलबूते के बाहर है, तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राज्य वेश उतार दिया। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि इस कलयुग में न जाने कितने ऐसे हैं जो छद्म वेश धारण करते हैं, वो क्षत्रिय का स्वरूप धारण करके राज्य का ना वो प्रशासक बनने के लिए, राजा बनने के लिए तैयार होते हैं, परंतु उनमें कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि उनकी वास्तविकता तो तब सामने आएगी जब कोई वास्तविक क्षत्रिय उनके सामने आकर हथियार उठाएगा। तो वास्तविक जो क्षत्रिय होता है ना, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो कार्य करता है धर्म के अनुसार। जो वास्तविक राजा होता है ना, वो धार्मिक होता है और धर्म के अनुसार कार्य करता है। और पहले क्या होता था, राजा जो होते थे वो अपने जो भी कार्य करने जाते थे पहले अपने गुरु से, जो उनके कुलगुरु होते थे उनसे निर्देशन लेते थे कि अभी इस कार्य के ये हो रहा है तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरा ये कि जब बच्चे पैदा होते थे ना क्षत्रियों के, तो भी वो गुरुकुल में जाते थे और उनको पूरा प्रशिक्षण दिया जाता था कि किस तरह से आपको युद्ध करना है, शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान दिया जाता था कि किस तरह से न्याय करना है, और उनको पूरा पता होता था कि शास्त्रों में एक सुंदर जो राज्य है उसकी क्या परिभाषा है, किस तरह से राज्य करना चाहिए। आजकल तो राजा जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने इंद्र तृप्ति को ही अपने जीवन का मकसद समझते हैं, है ना, उनको ये नहीं। हालांकि शास्त्र कहता है जो राजा होते हैं ना, उनको जो प्रजा होती है उसके सुख को, मतलब प्रजा का सुख जो है वो अपने सुख से भी अधिक करके समझना चाहिए। भले ही उनको लगे कि इससे हमें सुख नहीं मिलने वाला है, तो भी वो प्रजा के सुख को ज्यादा इम्पोर्टेंस उनको देनी चाहिए। हम देखते हैं महाराजा श्री राम, उन्होंने प्रजा को सुख देने के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। अपनी पत्नी जो एक पत्नी व्रता राजा थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने अपनी पत्नी, तो वो दिखाना चाह रहे थे कि प्रजा को आनंद देने के लिए राजा को अपने आनंद को भी बलिदान कर देना चाहिए। आजकल अगर किसी राजा को ये बात बताई जाए तो उसको डाइजेस्ट ही ना हो ना। एक बार क्या हुआ, एक इंडिया का कोई राजा था, कोई प्राइम मिनिस्टर था, तो उसको उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि वो बहुत सारा धन जो है, वो जो गवर्नमेंट का धन है वो अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च कर रहा है, जबकि उसे ना गवर्नमेंट के कार्यों में खर्च करना चाहिए। तो कोई ना न्यूज़कास्टर जो उनके उनसे होती है, उनसे पूछने के लिए आए थे, उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, तो बोला कि आपके ऊपर ये आरोप है कि आप बहुत सारा धन जो है वो अपने रिलेटिव्स के ऊपर खर्च करते हो। अभी साधारणतया कोई मतलब होते ना जो पॉलिटिक्स, वो ऐसे बोलते कि नहीं नहीं ये तो सब मुझ पर आरोप लगाया गया है, मैं ऐसा कुछ नहीं, जो दूसरे पॉलिटिशियंस है ना वो मुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं इसलिए मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। या उसको ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है अगर वो ऑनेस्ट है तो उसको ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है उसे गलती हो गई, अभी मैं ऐसा नहीं करूँ। वो ये दोनों बातें नहीं बोल रहा है, पता है क्या बोला उसने? उसका आंसर सुनकर सारे जो वो प्रेस रिपोर्टर थी ना वो भी परेशान हो गए। उसने बोला कि अगर मैं उस धन को अपने रिश्तेदारों के ऊपर ना खर्च करूं तो क्या तुम्हारे रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करूंगा? मतलब आजकल के जो पॉलिटिक्स जो नेता जो हैं उनको यही पता है कि जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है वो मेरे आनंद के लिए है, मुझे इससे आनंद मिलना चाहिए। प्रजा के ऊपर, प्रजा जाए बाढ़ में, कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई मरे या जिए, उससे कोई राजा को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन पहले जो होते हैं राजा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मनुष्य को कोई कष्ट नहीं था उनके राज्यों में, गाय और बैल कष्ट में थे और महाराजा परीक्षित इतना ज्यादा उनके लिए दुखी हो रहे हैं और उस कलयुग को मारने के लिए तैयार है, है ना, हथियार तलवार निकाल दिए और मारने के लिए तैयार हो गए हैं। और यहाँ तक के जो ऋषि मुनि जिनको सूत गोस्वामी बता रहे, आखिर उसने मारा क्यों नहीं? जब राजा ने देखा कि मेरी प्रजा के इन पशुओं पर जो कि बहुत ही ज्यादा निर्बल हैं, उनके ऊपर इतना अत्याचार हो गया, तो उसी टाइम पर उसको मार डालना चाहिए था, मारा क्यों नहीं? लेकिन आजकल के राजा तो स्वयं से कसाई घरों के लाइसेंस देते हैं कि हाँ यहाँ पर आप आराम से पशु हत्या कीजिएगा। तो वास्तव में भक्तों, आज एक पवित्र राजा के होने की आवश्यकता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ये पवित्र अच्छे शुद्ध जो वास्तविक क्षत्रिय कैसे बनेंगे पता है आपको? वास्तविक क्षत्रिय तब बनेंगे जब उनको वास्तविक निर्देशन मिलेगा, सही शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा उनको शिक्षा प्राप्त होगी। जब शुद्ध ब्राह्मण जो होंगे वो उन क्षत्रियों को शिक्षा देंगे तभी एक अच्छा राजा प्राप्त होगा। और एक शुद्ध क्षत्रिय जो शुद्ध ब्राह्मण कैसे बनेगा? शुद्ध क्षत्रिय तब बनेगा जब ब्राह्मण उसको शिक्षा देगा। और शुद्ध ब्राह्मण कब कैसे बनेगा वो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो हम बनाने के लिए आए हैं। हम बनाएंगे शुद्ध ब्राह्मण, हम देंगे लोगों को शिक्षा शास्त्र की कि क्या होता है। और हमारे तो धर्म में शास्त्रीय जो ये जो शासक होते हैं, जो प्रजा के पालक होते हैं, उनको तो भगवान का स्वरूप माना गया है, यानी कि वो भगवान का प्रतिनिधि होता है जो राजा होता है। इसीलिए जब महाराजा युधिष्ठिर, जब ये महाभारत का युद्ध हो गया तब वो बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्होंने सोचा मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ है, इतने लोगों की हत्या हुई है, तो इसका कारण मैं हूँ। भगवान ने उनको, भगवान साक्षात कृष्ण ने उनको समझाया कि नहीं वो अधर्मी थे, उनकी मृत्यु होना अनिवार्य थी, लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर अपने आप को उस दुख से बाहर ही नहीं निकाल पा रहे थे। तब महाराज युधिष्ठिर को लेकर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए और भीष्म पितामह को कहा कि ये महाराज युधिष्ठिर जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है, आप उनको ये जो राज्य धर्म की, जो धर्म राजा का जो धर्म होता है उसकी शिक्षा दीजिए। तब भीष्म पितामह कहा कृष्ण को कि आपके होते हुए मैं शिक्षा दूं? मेरे अंदर क्या ऐसा सामर्थ्य है कि आप तो कितना अच्छा समझा सकते हो, आप इसको समझाओ। और उसके अलावा मेरी हालत तो देखो, मैं कितना कमजोर हो गया हूँ, मेरे शरीर के एक एक अंग में तीर लगे हुए हैं, रक्त बह रहा है, इतनी पीड़ा है मेरे शरीर में कि बोलना भी मेरे लिए संभव नहीं है, और उसके अलावा अब तो इतने दिनों से तीरों के ऊपर बैठे बैठे मेरा सारा ज्ञान भी समाप्त हो गया, बुद्धि भी इतनी कमजोर हो गई, मैं क्या इसको बताऊंगा, तुम खुद ही बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह को, क्योंकि भगवान जो है वो अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। जिस तरह से भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया, तो उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज को भी समझा सकते थे, लेकिन भगवान चाहते थे ये राजधर्म की जो शिक्षा है वो भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को मिले। इसलिए भीष्म पितामह को भगवान ने कहा, अब मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि जब तक आप प्रवचन करते रहोगे, जब तक आप इसको बताते रहोगे राजधर्म के विषय में, तब तक आपके शरीर को जरा सा भी कष्ट नहीं होगा, कोई भी आपको पीड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने जब भीष्म पितामह के शरीर पर अपना हस्त कमल रखा, उनको स्पर्श किया, उसी क्षण उनका जो शरीर था वो आनंदित हो गया। उनको इतना आनंद आ रहा था, उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माता की गोद में सिर रखकर आनंद से सो रहा होता है ना, उनको इतना सुकून आ रहा था। वो कृष्ण को बोल रही थी, बस आप यहीं खड़े रहना, यहाँ से हटना नहीं, मैं जब तक अपने प्राण न त्यागूं तब तक। और उस समय जब वो उनकी कंडीशन थी, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको यह भी वरदान दिया कि आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी कि जो शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान है वो अभी आपको स्मरण हो जाएगा, और आप बोलते रहिए। और वहां पर एक दो दिन नहीं, पूरे 50 दिन तक महाभारत में तो पन्नों के पन्ने भरे हुए हैं, जब युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह इस तरह से राजधर्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो हमारे वास्तविक जो संस्कृति है उसमें राजा को पूरा प्रशिक्षण मिलना चाहिए, और इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हम ब्राह्मण बनाएंगे, हम लोगों को शास्त्र की शिक्षा देंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी अपने पर्सनली भी, जो पहले जब वो होते थे तो जो पॉलिटिक्स होते थे उनको लेटर लिखते थे कि आप लोगों को इस तरह से राज्य चलाना चाहिए, एकादशी के दिन कंपल्सरी हॉलीडे होना चाहिए, और है ना जो भी स्कूल्स वगैरह हैं वहां पर श्रीमद् भगवद गीता कंपल्सरी पढ़ानी चाहिए, अपने धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। इस तरह से वो अक्सर जो पॉलिटिक्स वगैरह होते थे उनको लेटर लिखते थे। अब ये अलग बात है कि कौन आजकल जो पॉलिटिक्स होते हैं वो तो शुद्ध शिक्षा को प्राप्त करना चाहते ही नहीं है, लेकिन जब तक इस तरह से नहीं होगा ना, जब तक शुद्ध राजा नहीं होगा तब तक प्रजा कभी भी आनंदित नहीं हो सकती है, और ना ही प्रजा राज्य कोई संपन्न हो सकता है। भले ही संसार में कितना ही टेक्नोलॉजी ज्यादा हो जाए, साइंस कितना तरक्की कर ले, लेकिन जब तक शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं जिया जाएगा तब तक कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता है, भले ही भौतिक इन्वेंशन, भौतिक प्रोग्रेस कितनी ज्यादा बढ़ जाए। आगे श्रीसूत गोस्वामी कहते हैं, पतितं पादयोर्वीर कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावदि श्लोक्य आह चेदं हसन्निव। पतितं पादयोर्वीर कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावदि श्लोक्य आह चेदं हसन्निव। पतितं पादयोर्वीर कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावदि श्लोक्य आह चेदं हसन्निव। पतितं पादयोर्वीर, पतितं का मतलब होता है गिरा हुआ, पादयो मतलब पैरों पर, वीर यानी वीर, कृपया दीनवत्सला, कृपया यानी कृपावश, दीनवत्सला यानी गरीबों के प्रति दयालु, शरण्य जो शरण स्वीकार करने में योग्य है, शरणागत का रक्षक, न अवधि, न का मतलब होता है न अवधित का मतलब होता है बद्ध किया, श्लोक्य यानी जो गायन किए जाने योग्य है, आह कहा, च भी, इदम यानी यह, हसन्निव यानी मुस्कुराते हुए। पतितम पादयोर वीरम, क्योंकि वो पतित था जो कलयुग था, वो उनके चरणों पे गिर गया था। पादयोर वीरम, महाराज परीक्षित के चरणों पे गिर गया था और महाराज परीक्षित कृपया दीनवत्सल, वो दीनवत्सल थे, उनके अंदर करुणा थी। वास्तव में भक्तों, ये भक्तों के अंदर एक नेचुरली गुण होता है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा करुणावान होते हैं। ये आज अगर हमारे हृदय में करुणा नहीं है ना, तो समझो कहीं पर भक्ति जो है वो कंप्लीट नहीं है, परफेक्शन नहीं है भक्ति की। हृदय के अंदर करुणा अवश्य होनी चाहिए। करुणा से तो हम कुछ बोलते भी है ना, एक भक्त जब कुछ बोलता भी है तो भी करुणा से बोलता है, क्योंकि उसको दुख होता है। वरना तो भक्तों का क्या काम होना चाहिए, कुछ भी ना करे, वो छोड़ दे सब कुछ और चलना जाए भगवान की भक्ति करने के लिए वृंदावन में, है ना, उसको पता चल गया भक्त। लेकिन फिर भी जो आचार्य होते हैं, प्रवीण जी का आचार्य होते हैं, वो हर जगह पर जाते हैं और इतने अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं, प्रवचन करते हैं, इतने लोगों को समझाने के लिए जगह जगह पर उनको शिक्षा देने के लिए कार्य करते हैं, कितना सारा। श्रीला प्रभुपाद जी कितने बड़े आयु में फिर भी वो अमेरिका जैसे कन्नम कंट्री में गए और वहां के लोगों के साथ उन्होंने रहना स्वीकार किया, किस तरह से उनको हर चीज को फेस करना, ये सिर्फ करुणा ही तो है। ये भक्त के अंदर करुणा ही होती है जो उससे ये सब कार्य करने के लिए विवश कर रही होती। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित को बताया जा रहा है दीन वत्सला, जो दीन होते हैं उनके ऊपर भगवान के जो भक्त होते हैं वो सदैव करुणा करते हैं। शरण्य नावधि श्लोक किया, अब वो शरण्य है, शरण देने योग्य है जो महाराज परीक्षित हैं, तो इसलिए अवधित यानी बद्ध किया, मतलब उस अवधित मतलब मारा नहीं उसको, है ना, पहले मारने के लिए आ रहा था, वधित का मतलब होता है मारना, अवधित मतलब उसको मारा नहीं। और आह चेदम हसन निवा, उसको कहा, क्या कहा, किस तरह से कहा, हसन निवा, उसको हंसी आ गई। महाराज परीक्षित ने देखा अभी तो वो उनके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म कर रहा था, अपने आप को क्षत्रिय राजा का वेश धारण किया होता, और अभी मैंने खाली हथियार निकाला है और ये मेरे चरणों में पड़ गया, ये कैसा राजा है। और आजकल के राजा ऐसे ही होते हैं, उनको पहले तो बहुत ज्यादा मतलब अब धूस जबवाएंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, और थोड़ा सा दूसरा कोई कंट्री अगर हमला कर देता है तो सब घुटने टेक देते हैं। ऐसा राजा नहीं होता है, वास्तविक राजा जो होता है उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो टक्कर लगाता है। मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा कि असली क्षत्रिय कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करता, और इसने तो फौरन से आत्मसमर्पण कर लिया, तो महाराज परीक्षित को और भी उल्टा उसके ऊपर हंसी आ रही थी। अनुवाद देखिए, शरणागत का रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय राजा परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कलि को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे क्योंकि वे दीनवत्सल जो हैं। और फिर से ट्रांसलेशन देखिए, शरणागत का रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कलि को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे क्योंकि वे दीन वत्सल जो हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए, जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदय है। वे हंस रहे थे क्योंकि छद्म वेशधारी कलि ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी, और वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि जिस पैनी यानी तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे उससे यह दीन निम्न जाति वाला कलि सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। इसीलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सदयता का गुणगान किया जाता है। वे सदया तथा कृपालु सम्राट थे और अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस तरह दैवी इच्छा से कली बच गया। अब यहाँ पर क्योंकि ये प्रश्न किया था ना उन ऋषियों ने कि आखिर मारा क्यों नहीं, उसको छोड़ा क्यों, दंड उसको खाली दंड देके क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण, क्योंकि महाराज परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं थे, उसने प्रभुपाद जी ने बोला एक साधारण क्षत्रिय भी जो उसकी शरण में आ जाता है तो वो तो उसको मार डालते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे, इनके जैसा और किसका सौभाग्य हो सकता है जब उनका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते हैं, बड़े बड़े जो भक्त होते हैं, वो पूरा जीवन प्रयास करते रहते हैं कि वो भगवान की भक्ति करते हैं, और बड़े बड़े योगी जन जो हैं वो ध्यान लगाते हैं, तब कहीं जाकर भगवान का एक छोटा सा जलवा, छोटी छोटी सी झलक उनको दिखने में आती है। परंतु इन्होंने माता के गर्भ में साक्षात भगवान के दर्शन किए थे। इनके विषय में और क्या कहा जाए कि भगवान साक्षात उनकी रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए थे। और इनके कुल का क्या कहा जाए, इनके पांडव जन थे, इनके पिताजी जो थे, इनकी माता और हर कोई इनके कुल में भगवान के शुद्ध भक्त। ये शुद्ध भक्तों का परिवार है और शुद्ध भक्तों की ये सबसे बड़ी पहचान है कि उनके अंदर करुणा का गुण होता है। जब कलयुग को उसने देखा कि ये मेरे चरणों में आकर गिर गया है, वो मुझसे कृपा की याचना कर रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी तलवार जो हर अपराधी को मार डालने वाली होती है, और आज ये कलयुग मेरे चरणों में गिर गया है तो इससे वो बच रहा है। तो उसको हंसी आ रही थी क्योंकि अब जब क्षत्रिय जो वास्तविक योद्धा होता है ना, जिसके अंदर पास शक्ति होती है, मार तो सकता है कोई भी, ज्यादा बलवान ज्यादा शक्तिमान तो वो होता है जो आपको क्षमा कर दे। मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि उसने अपराध किया है, फिर भी आप यदि उसको क्षमा कर दो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए अब यहाँ पर महाराज परीक्षित जो है वो उनको अवधित, उसको मारा नहीं है, बल्कि अब क्या करते हैं वो आगे हम देखते हैं। वो महाराज परीक्षित जो है वो धर्म रूपी बेल से महाराज परीक्षित जो है वो इस कलयुग से जो कि उसके शरण में आ गया है, उनसे कह रहे हैं, राजोवाच नती गुड़ाकेशय शोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु नती गुड़ाकेशय शोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु नाति गुडाकेशय शोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। शब्दार्थ राजोवाच, अर्थात महाराज परीक्षित ने कहा, न ते गुड़ाकेश, न मतलब नहीं, ते मतलब वो गुड़ाकेश यानी अर्जुन, यशोधराणाम यश पाने वाले का बद्ध अंजले हाथ जोड़कर वह यानी निश्चय ही भयम यानी भय अस्ति है, किंचित तनिक भी न, नहीं न तो वर्तितव्यम यानी रहने के लिए अनुमति दी जा सकती है। मदीय मेरे राज्य में त्वम यानी तुमको, अधर्म बंधु अधर्म के मित्र। तो माना जब परीक्षित ने क्या कहा उसको, उस कलयुग को क्या कहा, नते गुड़ाकेश यशोधरणम, तुम जानते हो कि हम गुड़ाकेश अर्जुन के यश के उत्तरदायी हैं। गुड़ाकेश अर्जुन जो कि इतने सारे ना मतलब जो भी उनके शरण में आते थे, महाराजा युधिष्ठिर इत्यादि जो भी उनके शरण में आते थे, तो भले अपराधी होते थे तो भी वो उनको क्षमा कर देते थे। तो वो धर्म पर चलने वाले मेरे जो पूर्वज हैं उनके यश का उत्तरदायी अब मैं हूँ। और कृतांजलिर्वय भयमस्ति किंचित, तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आ गए हो। कृतांजलि हाथ जोड़कर तुम मेरे सामने आ गए हो, तो फिर भयमस्ति किंचित, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। न वर्तितव्यम भवता कथंचना, न वर्तितव्यम, लेकिन फिर भी तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने के का अधिकार दूंगा। न वर्तितव्यम भवता कथंचना, मैं तुम्हें अपने राज्य में रहने के लिए कभी भी अनुमति नहीं दूंगा। क्षेत्रे मदीय, ये मेरा राज्य है, और तुम कौन हो, तुम अधर्म बंधु, तुम अधर्म के बंधु हो, तुम अधर्म करने वाले हो, और तुमको अधर्मियों को मैं अपने राज्य में तो नहीं रहने देता। लेकिन तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम शरणागत हो गए हो, मेरी शरण में आ गए हो, तो मैं तुम्हें क्षमा तो कर दूंगा, जीवन दान तो दूंगा, लेकिन न वर्तितव्यम भवता कथम चना क्षेत्र मदीय, मैं अपने राज्य में तुम्हें रहने नहीं दूंगा। अनुवाद, राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरे शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वह आत्मसमर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध कराया था, लेकिन किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं। वे चाहते थे कि संसार में महाराजा युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराजा परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें। अतएव महाराजा परीक्षित जैसा उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फूलने फलने की अनुमति नहीं दे सकता था। राज्य में भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज भ्रष्टाचार से बच जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयति किरम् यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है। जब महाराजा परीक्षित ने कलयुग को देखा कि वो कलयुग अपराध कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो फिर उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा, फौरन उसको मारने के लिए तैयार हो गए, हथियार निकाला। और उसके बाद जब वो उसकी शरण में आ गया तो फिर उनको जीवन दान तो दिया मगर अपने क्षेत्र में रहने नहीं दिया, क्योंकि कुछ भी हो जाए अधर्म को हम कभी भी अपने क्षेत्र में नहीं रहने दे सकते। भले ही अधर्म कितना ही ज्यादा जो शक्तिमान क्यों न हो जाए, उसको कभी भी ये अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्षेत्रे मदीये, यह शरीर भी क्षेत्र है, और उसके अंदर अधर्म को घुसने नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर इस संसार में वही राजा जो है वो सही तरह से राज्य शासन कर सकता है जो जिसके अंदर इतना दम हो, इतना बल हो कि वो अपने राज्य में अधर्म को घुसने ना दे। हम देखते हैं पिछले बहुत सारे ऐसे राजा हैं, ऐसा नहीं है कि धर्म राज धर्म के साथ जो राज्य था वो सिर्फ वैदिक समय में होता था, अभी इस कलयुग में ये सब नहीं संभव है। हो सकता है, श्रीमद् प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को इस संसार में लागू करने के लिए 18 दिन काफी हैं। अगर लेकिन अभी तक भक्त इतने ज्यादा तैयार नहीं हुए, अभी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। वास्तव में ये सब जो अधर्म हो रहा है ना, उसका एक ही कारण है, ये सारा जो राज्य है, ये जो सारा संसार है ना, वो एक छत्र राजा होता था, एक ही धर्मात्मा राजा होता था और सारे संसार को चलाता था। आज देखिए एक ही कंट्री में अलग अलग भाग हो जाते हैं, एक ही भाग में अलग अलग नेता हो जाते हैं। तो ये इसी का कारण यही है कि जो वास्तविक नेता है उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अधर्म को भगा सके। वो अब उसके अंदर कोई असली राजा के अंदर जो वास्तविक गुण है ना, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए। जब तक राजा भगवान का भक्त नहीं है, क्योंकि राज्य करना, प्रजा का पालन करना या जीवों का कल्याण करना, ये भगवान का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भगवान का कर्तव्य है। राजा तो भगवान का एक प्रतिनिधि होता है, इसलिए सबसे पहले राजा को प्रशिक्षण देना चाहिए कि आपको भगवान का भक्त होना चाहिए। फिर भगवान के इच्छा अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार, जैसे पांडवों ने किया है ना, पांडव भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, बाकी वो राजा तो थे, उन्होंने युद्ध किया, जो भी किया, लेकिन भगवान के आदेश अनुसार जब उन्होंने किया तो उन्होंने सारी प्रजा को आनंद प्रदान किया। ये द्वापर के बाद भी बहुत सारे ऐसे राजा आए, जैसे महाराजा प्रताप रुद्र। हम जानते हैं आज से 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पर आविर्भाव हुआ था, उस समय में महाराजा प्रताप रुद्र थे और वो कितना ज्यादा भगवान के भक्त थे, बहुत ज्यादा महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे। इवन उनके जो पिताश्री थे महाराजा पुरुषोत्तम दास, वो क्या करते थे, वो इतना ज्यादा मतलब भगवान जगन्नाथ जी के इतने शुद्ध भक्त थे कि जब वो युद्ध करने के लिए जाते थे ना, तो भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी सहायता करने के लिए आते थे, साक्षात भगवान जगन्नाथ उनकी सहायता करने के लिए आते थे। तो एक बार जब उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर कांचीपुर के एक राजा ने उनकी अपनी पुत्री का विवाह, उन्होंने सोचा कि मैं महाराज पुरुषोत्तम दास के साथ उनका विवाह करवाऊंगा, तो जो कि ना उनके प्रताप रुद्र के पिताजी थे, अभी तक उनका विवाह नहीं होता, उनकी माता के बारे में कि ना माता पिता की जब विवाह हो रहा था तो कांचीपुर के जो राजा थे उन्होंने देखा, सोचा कि अपनी पुत्री का विवाह करने से पहले एक बार मैं जाके उसको देख के आता हूँ, वो राजा जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह होने वाला है उसको देख के आता हूँ। तो जगन्नाथपुरी में इत्तेफाक से उसी दिन गए जिस दिन की जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी। अब जगन्नाथ रथ यात्रा में क्या होता है, जो राजा होता है वो एक सुनहरा झाड़ू से पूरा रथ के आगे से झाड़ू निकालता है ना, तो जब झाड़ू निकाल रहा था तब जब कांचीपुर के राजा ने उसे देखा, बोला ये तो यहाँ से सफाई कर रहा है, ये राजा है, ये ऐसा राजा है, ये तो बिल्कुल ये तो स्वीपर लग रहा है, स्वीपर झाड़ू निकालने वाला लग रहा है, इससे क्या मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा, इससे मैं अपनी, क्योंकि राजा को पता नहीं था भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, जगन्नाथ भगवान की महिमा के विषय में कुछ भी पता नहीं था। तो उसने बहुत बुरा भला बोला और बोला इसके साथ तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कराऊंगा, ऐसे करके वो चला गया। तब जब महाराजा को पता चला कि उसने ऐसे कहा है, तो उसको ऐसा लगा कि उसने मेरा ये अपमान नहीं किया बल्कि भगवान जगन्नाथ जी का अपमान किया है। तो भगवान जगन्नाथ जी, उसने फौरन से क्या किया,
सेना तैयार की और स्वयं चला गया युद्ध करने, उसको कि मैं उसको जाके सबक सिखाना चाहिए मुझे कि उसने भगवान जगन्नाथ के बारे में भी ऐसे बोला। अभी ऐसे वो गया युद्ध किया और वो हार गया। तब उसने जाके जगन्नाथ भगवान से कहा कि मुझे कोई शौक नहीं था उसकी बेटी के साथ शादी करने का, मैं तो आपके अपमान का बदला लेने जा रहा था और आपने मुझे हरा दिया। तब जगन्नाथ भगवान ने बोला कि तुम चले गए पहले से चले गए, आधा रथ यात्रा हो रही थी और तुम आधे से चले गए और तुमने मुझसे आज्ञा भी नहीं दी। तुमने उसे आज्ञा तो लेनी चाहिए थी ना, मुझसे पहले बोलना चाहिए था कि मैं जा रहा हूँ युद्ध करने के लिए, तो तुमने मुझे बोला भी नहीं। तो फिर है ना, फिर उसके बाद महाराज ने जगन्नाथ भगवान से बहुत ज्यादा क्षमा याचना की और बोला मुझे क्षमा कीजिए और मेरी सहायता आपको करनी चाहिए। तब जगन्नाथ ने बोला हाँ ठीक है, आपकी सहायता करूंगा, आप युद्ध करो भले। जगन्नाथ भगवान ने जब उनको ऐसे आश्वासन दिया, वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे रास्ते में उनको एक बुढ़िया मिली और एक बुढ़िया ने महाराज को कहा कि अभी यहां से दो घुड़सवार गए हैं, वो आपकी सेना के थे। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर दूध दही लस्सी ये सब बेच रही हूँ, उन्होंने मेरी लस्सी भी पी, मक्खन दूध सब उन्होंने खाया, बोला हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं। और ये खाने के बाद जब मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने बोला पैसे हमारे पास नहीं है, हमारे पीछे हमारे राजा आ रहे हैं ना, उनसे पैसे ले लेना आप। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं उनको कैसे यकीन दिलाऊंगी कि आप लोग आए थे मुझसे ये सब चीजें लेने के लिए, आप मुझे कोई निशानी तो दो, वो मुझे तो पैसे देगा ही नहीं, वो बोलेगा झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी है, वो अंगूठी देख लीजिए और मेरे जो ये जो मैंने अभी उनको खिलाया पिलाया है उसके पेमेंट आप कर लीजिए। जब महाराज ने देखा तो ये अंगूठी साक्षात जगन्नाथ भगवान की थी। जगन्नाथ भगवान की ये अंगूठी देखकर वो इतना हैरान हुए और फिर उनको समझ में आ गया कि जगन्नाथ जी जो हैं वो पहले से ही विवाह का है ना ये सब ट्रीट उन्होंने ले ली है। अब वो जा रहे थे आगे और जब जाके वहां पर देखा तो पहले से ही राजा को हरा दिया था जगन्नाथ भगवान, पहले से ही अभी तक वो पहुंचे ही नहीं थे और बहुत सारी सेना के रूप में कांचीपुर के राजा को परास्त कर दिया था। तब जब राजा परास्त हो गया तब प्रताप रुद्र के पिताजी को राजा ने कहा कि अब मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ, आप करिए। तब महाराजा ने कहा कि अब आपकी पुत्री से विवाह करूं मैं नहीं करना, मुझे नहीं करना आपकी पुत्री के साथ विवाह, मैं नहीं करना चाहता हूं आपकी पुत्री के साथ विवाह, तुम जाके इसको किसी स्वीपर के साथ शादी कराओ, है ना, कोई स्वीपर होगा ना जिससे अब तो तुम परास्त हो गए, तुम्हारे पास तो राजा नहीं, अब तुम किसी राजा के साथ तो तुम इसकी शादी नहीं करा सकते, अभी जाओ किसी स्वीपर के साथ इसकी शादी कराओ। तो मुझे कह रहे थे ना इस तरह से, मैं तो जगन्नाथ भगवान की सेवा कर रहा था, ऐसे कहकर वो चले गए। और ये जो महाराजा थे ना कांचीपुर के, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया, एक साल के बाद जब वापस से रथ यात्रा हुई तो रथ यात्रा के टाइम पर वापस से महाराजा पुरुषोत्तम जो है वो झाड़ू निकाल रहे थे इस तरह रथ के आगे से। तब वो महाराजा पुरुषोत्तम को कहने लगे कि मुझे राजा ने ये आदेश दिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी स्वीपर से करवाऊं और अभी आपसे ज्यादा महान स्वीपर मुझे संसार में और कोई नहीं दिख रहा, आप मेरी बेटी का जो है ना मेरी बेटी के साथ विवाह कीजिए, मैं आपके सामने ये है ना वो जगन्नाथ भगवान के सामने आपसे ये याचना कर रहा हूँ कि कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। फिर जब वो इस तरह से जब देख रहे थे तो जगन्नाथ जी भी मुस्कुरा रहे थे और इस तरह से उनका विवाह हुआ। मतलब कहने का अर्थ ये है कि भगवान के शुद्ध भक्त होते थे पहले जो राजा होते थे, इसी तरह से महाराजा कुलशेखर महाराजा कुलशेखर जब भी मतलब उनके घर में अपने घर में एक बहुत बड़ा मंदिर था, जो महाराज का महल था ना उसमें बहुत बड़ा मंदिर था, उसमें भगवान के विग्रह थे और वो हर रोज जो है वो नगर कीर्तन करते थे, अपने विग्रह को निकालते थे नगर कीर्तन करते थे डेली। वहां पर ऐसा होता था कि शुद्ध भक्त इतने सारे आते थे, वैष्णव आते थे, उनको प्रसाद किया जाता था और बहुत सारे उत्सव निकाले जाते थे, जो भी उत्सव होता था महाराजा जो है ना वो बहुत ही बिग स्टेज पर वो सारे प्रोग्राम्स करते थे, जन्माष्टमी, रामनवमी, दशिंगा चतुर्थी, बहुत ही सुंदर तरीके से। आज हमारे पास ऐसा राजा होता जो इतने बड़े बड़े फेस्टिवल्स करता, कितने सारे डिवोटी बनते, लेकिन आज राजाओं को पता नहीं है कि किस तरह से हमें शासन करना है भगवान की भक्ति के। इवन जब महाराजा कुलशेखर जो था, एक बार क्या हुआ, उनकी इच्छा हुई कि अभी मैं जा रहा हूं वृंदावन, सॉरी उनका ये हुआ, वो यात्रा के लिए जाना चाहते थे, लेकिन सारे उनके जो मंत्री वगैरह सोच रहे थे कि ये चले जाएंगे फिर राज्य, मतलब ये हैं तो इतना अच्छा राज्य चल रहा है, ये चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ होना बंद हो जाएगा, और तो फिर है ना उनको जाने नहीं देना चाह रहे थे। फिर वो क्या करते थे, एक तरकीब निकालते थे कि जैसे ही वो जाने के लिए तैयारी करते थे या सोचते थे तो बहुत सारे वैष्णवों को आमंत्रण करते थे, और बहुत सारे शुद्ध वैष्णव सन्यासी भक्त आते थे और महाराज उनकी सेवा में लग जाते थे। बहुत दिन तक वो वैष्णव वहीं पर होते थे, सेवा करते थे, और फिर क्या होता था, कुछ बहुत सारे दिनों के बाद जब वो जाते थे वापस से, वो सोचते थे कि अभी मुझे जाना चाहिए यात्रा के लिए, तो वापस से जो उनके मंत्री है ना वो बहुत सारे वैष्णवों को बुलाते थे। तो इस तरह सारा टाइम इतने सारे वहां पर प्रसंग चलते थे, भागवत कथाएं होती थी, बहुत सारे गीता सम्मेलन होते थे, इस तरह से सारा जो प्रजा है ना उसको भक्ति का अवसर मिलता था। लेकिन वहां पर क्या था कि कुछ जो ऐसे भी मंत्री थे जो ये चीज नहीं चाहते, मतलब उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, फिर वो क्या उन्होंने क्या किया कि भगवान की जो विग्रह थी ना उनके घर पे, उनका कुछ उनकी ज्वेलरी जो है वो चोरी कर दी, और आरोप लगाया उन भक्तों के ऊपर जो वहां पर आए थे, बोला ये उन भक्तों ने किया होगा। तब महाराज ने कहा कि अगर इन भक्तों ने ऐसा किया है तो आप, मैं उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हूं, आप एक बड़ा सा कोबरा लेकर आइए, किंग कोबरा होता है ना सर्प, बोला जो कोबरा है उसको एक बॉक्स में रखो और उसके बाद मैं अपने हाथ को उसके अंदर डालूंगा, अगर उस कोबरा ने मुझे डंक मारा, मुझे कोई क्षति हुई, तो मैं समझूंगा कि वो वैष्णव जो है वो अपराधी हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मुझे कोई क्षति पहुंची नहीं, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है। तब उन्होंने ऐसा ही किया, तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसे थोड़ी होगा, अब नाग है तो डसेगा, उसको क्या खबर कि चोरी किसने की है। लेकिन जब महाराज ने अपना हाथ, महाराजा कुलक्षेत्र ने अपना हाथ वहां पर डाला, तो फिर उनको कुछ भी क्षति नहीं हुई। फिर सारे मंत्रियों को बहुत ज्यादा है ना उन्होंने पनिश किया कि आप लोग ने वैष्णव के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया। फिर उसके बाद वो अपने बेटे को राज्य सौंप कर चले गए थे भगवान के धाम की यात्रा करने के लिए। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे राजा, एक दूसरे राजा थे, उनका भी नाम पुरुषोत्तम, राजा पुरुषोत्तम था। वो क्या करते थे कि जब भी वो युद्ध करते थे तो उनके साथ भी भगवान, उनके जो भगवान घर में राधे श्याम सुंदर थे, वो उनके साथ, पहले उनके साथ जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान जाते थे ना, तो इनके साथ राधे श्याम सुंदर जाते थे। और फिर जब उन्होंने अपने पूरे राज्य में ये बात को बोल दिया था कि देखो मैं जब भगवान की भक्ति कर रहा हूं, जब मैं भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा हूं ना, तब चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं क्या करो, मेरी जो भक्ति का समय है वो भक्ति का है, उसके बाद मैं पूरा राज्य कारोबार संभालूंगा, लेकिन ये समय जो है जो मेरी भक्ति का है उस समय में आप लोग कभी भी कोई राज्य का काम लेकर मेरे पास मुझे डिस्टर्ब करने के लिए मत आना। तो एक बार क्या हुआ, वो अंदर अपना पूजा ग्रह में बैठकर दरवाजा लॉक कर देते हैं और अंदर बैठकर वो भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे थे, अचानक एक राजा ने उनको उनके राज्य पर आक्रमण कर लिया। जब राज्य के ऊपर आक्रमण कर लिया तो सारे जो मंत्री थे उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, राजा को उठाना चाहिए, राजा को बताना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि अब राजा ने मना किया है इस तरह से, वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन सोचा अब ये आपातकालीन है, अगर हम अभी राजा को नहीं बताएंगे नहीं तो फिर हमारे राज्य को कौन रक्षा करेगा। तो फिर उन्होंने जोर जोर से राजा के दरवाजे को नॉक किया अंदर, और राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और बोला कि आप लोगों को मैंने बोला था ना कुछ भी हो जाए आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं भगवान के पवित्र नाम का जप कर। तो बोला राजा भी बहुत ही आपातकालीन समय आ गया है, किसी राजा ने जो है हमारे राज्य पर आक्रमण कर लिया है। तो उसने कहा कि देखो मैं भगवान श्याम सुंदर की भक्ति कर रहा हूं, उनका पवित्र नाम का जप कर रहा हूं, वो स्वयं संभालेंगे, मैं ये टाइम किसी को नहीं दे सकता, अगर उनको उनकी इच्छा है तो भले ही है ना मैं परास्त हो जाऊं, लेकिन मैं उनकी इस मैं अपने नाम जप को नहीं छोड़ सकता। इतनी शुद्ध भगवान की भक्ति करते थे। और फिर जब वो भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे थे, ऐसे जप करते करते वो भूल गए कि किसी राजा ने है ना उनके ऊपर आक्रमण किया है। वो आराम से अपना ड्यूटी वर्शिप जो करते थे वो करके जब बाहर आए तब सब लोग उनको देख के हैरान हो गए। बोला आप यहाँ, आप तो बाहर युद्ध कर रहे थे, अभी तो वो राजा जो आया था युद्ध करने के लिए उसके साथ आपने कितना घमासान युद्ध किया, कितना आपने उनको किस तरह से परास्त किया, हम लोग देख कर हैरान हुए। तभी है ना उसने बोला अरे मैं तो अंदर से बैठ कर माला कर रहा था और ये युद्ध। फिर वो समझ गए कि मेरी बिहाफ में भगवान ने स्वयं ही राज्य की रक्षा। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही कहते हैं, तस्मात्मुत्तिष्ट यशोलभस्व जित्वा शत्रुन् भुंक्ष राज्यं समृद्धं मय्येवेति निहत्ता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन्। कि मेरी योजना से अधर्म का नाश तो हो ही चुका है, तुमको खाली क्या करना है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम्हें खाली निमित्त मात्र बनना है। और आजकल के राजा सोच रहे हैं कि हम अपनी योजनाएं बनाएंगे जिसके कारण हम अधर्म को खत्म करेंगे। अधर्म तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक जीवों के हृदय पवित्र नहीं होंगे, जब तक जीव भगवान को के शरणागति नहीं होंगे, जब तक के लोग जो हैं वो भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस संसार में से अधर्म खत्म करना है तो उसका एक ही तरीका है कि उसको अंदर घुसने नहीं दिया जाना चाहिए। अधर्म को घुसने नहीं दिया जाना चाहिए, यानी धर्म का राज्य होना चाहिए। हर एक क्षेत्रे मदीये तम धर्म बंधु, साफ साफ बोला एक किसी भी क्षेत्र में अधर्म नहीं होना चाहिए। मतलब इसके भगवद गीता में इस शरीर को भी क्षेत्र कहा गया, तो इस हर एक क्षेत्र में अधर्म घुसना नहीं चाहिए। मतलब हर एक जीव को, हर एक मनुष्य को धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। किसी को मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी को नशा नहीं करना चाहिए, किसी को अवैध संग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस तरह से जब धर्म अधर्म जब शरीर से भागेगा तो स्वतः धर्म की स्थापना होगी। इसलिए राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि जो ये अधर्म हो रहा है, जो इतना खुले आम ये जो अधर्म को लाइसेंस दिया जाता है कि हाँ आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ पाप तक नहीं लगता करने वाले को, तो एक जब तक कोई ऐसा राजा नहीं होगा जो इन सब अधर्मों को अधर्म को घुसने नहीं देगा, मतलब अधर्म को जब तक सारे शरीरों से सारे क्षेत्रों से समाप्त नहीं करेगा, तब तक तो इस संसार में जो है ना वो कभी भी अच्छा राज्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धर्म की स्थापना करनी चाहिए। जब जहाँ पर धर्म स्थापित हो जाएगा, जहाँ तक संभव है भगवान के पवित्र नाम को स्प्रेड करना चाहिए। हर एक जीव चाहे कुछ भी हो, हमारा किसी के साथ संबंध हो जाए, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उसको नाम से जोड़ें, क्योंकि जब नाम से जुड़ेंगे ना, इस कलयुग में भगवान का नाम अवतार है। नाम से जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, जिस तरह भगवान अधर्मियों का सर्वनाश करते थे, उसी तरह नाम भी हमारे हृदय में बैठकर, हृदय में बैठे हुए जो अधर्मी है, अधर्म है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसका नाश करते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम को इतना फैलाएं कि जहां जहां अधर्म के बंधु बैठे हुए हैं वहां से निकल जाए। हृदय पवित्र जब तक नहीं होगा तब तक हम कभी भी इन अधर्म के इन निशानियों से छूट नहीं सकते। अधर्म तब तक हम पर राज करता रहेगा जब तक कि हृदय में धर्म की स्थापना नहीं होगी। और धर्म क्या है, भगवान के आदेश का पालन करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्वयं भी भगवान के इन वचनों को स्वीकार करना है, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, और जितना पॉसिबल है उसको अधिक से अधिक प्रचार करना है, सबको बताना है, ताकि हम
जहाँ पर हम रहते हैं एटलीस्ट हमारे क्षेत्र में अधर्म बंधु ना घुस सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्णा।